ओम शांति। आज इस भट्टी का बहुत सौभाग्य बढ़ाने के लिए हमारे बीच पधारी है हमारे प्यारी आदरणीय यज्ञ की महान हस्ती पुष्पा दीदी। दीदी जी बचपन से ही ज्ञान में है, 48 ईयर्स से वो समर्पित रूप से यज्ञ में सेवा दे रहे हैं। वो पांडव भवन करोल बाग दिल्ली की डायरेक्टर है। दीदी जूरी स्विंग की वाइस चेयरपर्सन भी है। आप देश विदेश में बहुत सारी सेवाएं दिया है और दे रही है। हमारी भाग्य कैसे बढ़ाना, जमा का खाता कैसे बढ़ाना, ये सब हमको समझाने लिए आज हमारे बीच दीदी उपस्थित है। पूरा लाभ लेंगे हम। दीदी का विषय है जमा का खाता कैसे बढ़ाए। जरूर दीदी के आशीर्वचन से हम बढ़ाएंगे। दीदी
ओम शांति। सब बोली ओम शांति। अभी भी अच्छी तरह नहीं बोला, बहुत अच्छा। आज का विषय है जमा का खाता कैसे बढ़ाएं। मैं समझती हूं जमा करना सबको बहुत अच्छा लगता है, खर्च करना भी अच्छा लगता है लेकिन जमा करना तो बहुत फायदे वाला है ना, है ना फायदे वाला। जो चाहते हैं हाँ जमा होना चाहिए वो हाथ खड़ा करो। दो चार हैं जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, समझा नहीं या तो, हाँ तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप सबको जमा करना प्रिय है तो ताली बजाओ। क्योंकि जमा करना बहुत अच्छा है लेकिन क्या जमा करना है ये बड़ी समझ चाहिए। कईयों को ये नहीं पता चलता क्या जमा करना है और क्या खर्च करना है, और विशेष बात जो जमा करना है वो कैसे करना है, ये भी तो अक्ल चाहिए ना। माताएं देखो कई बातों में बड़ी होशियार होती हैं, उनको थोड़ी बहुत खर्ची मिलती है, पति देता है बच्चों के लिए थोड़ा खर्चा करना या सब्जी या दूध लाना, वो उसमें से भी बचा लेती हैं और बचा बचा के पोटली बना लेती हैं बढ़िया सी। और जब कोई प्रॉब्लम आती है घर पर, कोई अचानक खर्चा आता है, पति सोच में जब पड़ जाता है तो कहती है कान में उसके, चिंता नहीं करो है आप कर लो काम। उस समय देखो वातावरण घर का कितना सुखदायी बन जाता है ना, बन जाता है ना, क्योंकि उस खर्च में से उसने जमा किया। अब ये तो साधारण बात है, स्थूल बात है, दुनिया की बात है, लौकिक की बात है, पर ये जमा का खाता भगवान ने जो हमको सिखाया, आप सोचो वो कितना सुखदायी होगा, वो कितना हमारा भाग्य बनाने वाला होगा, उससे हमारा जीवन कितना ऊंचा उठ जाएगा। क्योंकि संगम युग हमारी तकदीर को बनाने का युग है। और किसी भी युग में हम तकदीर बनाते नहीं है, तकदीर लेकर आते हैं, लेकर चलते हैं। सतयुग में भी हमारा भाग्य संगम के आधार से होगा ना, या वहां जाकर भी आप योग करेंगे, सेवा करेंगे, मालूम ही नहीं होगा। श्री बाबा भी हमसे निश्चिंत होगा, मेरे बच्चे सुखी हैं, मैं क्यों धरती पे जाऊं। वो भी वानप्रस्थ हो जाता है उस टाइम। मुरलियों में बाबा ने कहा है ना कई बार कि जब आपको सतयुग में मैं भेज देता हूँ, वर्षा दे देता हूँ, तो मैं वानप्रस्थी हो जाता हूँ, परम धाम में बैठ जाता हूँ, नीचे भी नहीं आता। तो अभी ही संगम पर प्यारा बाबा हम बच्चों का पद्मा पदम भाग्य बनाने के लिए, जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने के लिए कि मेरे बच्चे सदा के लिए सुखी हो जाएं, इसलिए आता है। और उसका ही पुरुषार्थ विधि हम बच्चों को सिखलाता है। तो जो हमने कई जन्मों में खो दिया वो भी हम कैसे फिर से वापस ले लें। देखो कितनी कमाल है, कितनी बड़ी करामात है, जादू है कि खोया हुआ वर्षा हम वापस ले लें। कोई चीज खो जाती है तो मनुष्य समझता है हाथ से गई। 63 जन्म हमने सब कुछ, यहां तक कि बाबा कहते हैं आप सिरताज थे मोहताज बन गए, माला माल थे कंगाल बन गई, कहां किया वो सारा धन। पूछता है ना बाबा कई बार, बताता भी है भक्ति में कैसे कैसे खर्च किया, अज्ञानतावश देह अभिमान में कैसे कैसे गवाया सब कुछ। पर संगम युग की इस ब्राह्मण जीवन के अंदर सबसे बड़ी विशेषता, छिपा हुआ रहस्य है कि हमारे जीवन की सब बातें, सब कुछ कैसे हमारा भाग्य बनाती हैं, कैसे हमारी तकदीर जमा होती है, और वो जो हमने व्यर्थ गवाया उसको भी हम कैसे सफल कर सके और कैसे उससे अपना जमा का खाता बढ़ाएं, भाग्य बनाएं। तो देखो हमने 63 जन्म समय भी गवा दिया, संकल्प भी गवा दिए, क्या क्या किया वो तो अब वर्णन करने की जरूरत भी नहीं है, आत्मा खाली हो गई। अब बाबा ने हमें सबसे पहले ज्ञान का खजाना दिया जो सर्वश्रेष्ठ खजाना है, जिससे ही हमारे भाग्य का सितारा चमकना आरंभ हो गया। हमारी आत्मा जो है वो एकदम प्रकाश से सब बातों को समझ गई, ज्ञान का प्रकाश मिल गया हमको। और बाबा ने हमें समझ दे करके त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बना दिया, त्रिनेत्री बना दिया, और आंखें खुल गई, बुद्धि रूपी आंख खुल गई। बाबा कहते सबसे पहले मैंने आपको वरदान दिया, बहुत बड़ी गिफ्ट दी, और वो दी दिव्य बुद्धि की। हम सबको सबसे पहला खजाना जो ज्ञान का मिला वो दिव्य बुद्धि दी भगवान ने। वैसे भी देखो जब कोई संतान जन्म लेती है लौकिक में तो माँ बाप हर एक ये चाहता है इसका जीवन सदा सुखी रहे, इसका भविष्य बड़ा ऊंचा हो, तो वो भगवान से कौन सी बात मांगता है अपनी संतान के लिए? ये नहीं कहता प्रभु जी इसको बंगला देना, प्रभु जी इसको कार देना, प्रभु जी इसको स्टेटस देना। जो समझदार माता पिता होते हैं, चाहे उस समय पंडित भी खड़ा हो, ज्योतिषी भी खड़ा हो, सभी एक ही कामना करते हैं, हे प्रभु जी इसको सद्बुद्धि देना। ठीक है ये बात? हाँ? क्यों? क्योंकि जहां सद्बुद्धि होगी वहां अपने आप सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, धन भी आएगा, संबंध भी आएगा, खुशियां भी आएंगी, सब कुछ आएगा। आज संसार में वही तो नहीं है, बुद्धि तो बहुत है लेकिन सतो प्रधान दिव्य बुद्धि नहीं है। तो हमारे भाग्य को बनाने के लिए हम अपने इस समय को जमा कर सके खजानों को, तो भगवान ने हमें सबसे पहला वरदान सद्बुद्धि का दिया। अब जो ये सद्बुद्धि अर्थात ज्ञान का खजाना मिला, मैं आत्मा उसे जमा कितना कर रही हूं, ये देखो। एक है ज्ञान सुनना, दूसरा है ज्ञान को समाना, तीसरा है उसे जीवन में उतारना, वैसा स्वरूप बन जाना। क्योंकि सुनने की आदत हमको बहुत है, सबको है ना, अच्छा भी लगता है, बड़ा मजा आता है, कानों से अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं तो अच्छी लगती है ना, क्योंकि भक्ति में ये किया हमने, खूब सुना पंडितों से, गुरुओं से, शास्त्रों से, गीतों से, मंत्रों से जप करके, सुनते ही रहे सुनते ही रहे सुनते ही रहे, लेकिन जो सुना वो समझा भी नहीं था। परंतु अब बाबा हम बच्चों को समझदार बनाता है। बच्चे इसे साधारण नहीं समझो, आप क्या सुन रहे हो? ईश्वर के महावाक्य। रोज भगवान की हम मुरली सुनते हैं, रोज नहीं सुनते तो रोज सुननी चाहिए, और रोज भी एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितनी बार पढ़ो और सुनो, ये अनमोल खजाना है। अब इस खजाने के लिए मैं कितना समय निकालती हूं, और बातों के लिए हम बहुत समय निकालते हैं। कोई फोन कॉल आएगी, अपना प्रिय है बहुत ज्यादा, तो कितना कितना देर बात करते रहते हैं, पता भी नहीं चलता। कई माताएं तो कहती हैं हमारा तो टाइम पास ही ऐसे होता है। माताएं क्यों, भाई भी तो, भाई सोचेंगे हम तो बड़े अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हो, माताएं भी भाई भी, बाबा के तो सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो तो फोन पर भी क्या देंगे, बाबा का संदेश जरूर देंगे, बाबा का बच्चा होगा तो बाबा की मुरली की एक पॉइंट सुनाएंगे। अगर लौकिक में कोई नई ज्ञान में चलता है, नहीं मानता है, तो उसको दूसरी रीति से बाबा की कोई बात या परिचय की बात या प्रोग्राम की बात वो सुनाएंगे, जिससे उसको प्रेरणा मिले। अब ये जमा कैसे मेरा होगा, यही ही जमा करने की हमारी एक सूक्ष्म रीति है। कई बार हम इन बातों को बहुत साधारण और मोटे रूप से ले लेते हैं, ठीक है मुरली सुन ली ना बस, परंतु क्या मैंने सचमुच उस पर मनन चिंतन किया? क्या मुझे उस महावाक्यों की सारा दिन स्मृति है? हमने दादियों को बहुत नजदीक से देखा है, दादियां एक बार मुरली नहीं कई कई बार पढ़ती और सुनाती थी। दादी प्रकाशमणि रात को भी मुरली पढ़ के सुनती थी, पढ़ के सोती थी, टीचर्स को अपने पास बुला लेती थी, थोड़ी बहुत जो भी गुड नाइट करने आती थी, उस समय भी रात के 11 बज रहे हैं, सारा दिन की थकी हुई है दादी, सारा दिन सबसे मिलती रही, कहीं क्लास, कहीं भाषण, कहीं ब्राह्मणों से, तो भी दादी कहती थी कल क्या बाबा ने कहा है वो मैं पढ़ूं। फिर सुबह पढ़ती थी, क्लास में सुनानी है इसलिए, फिर क्लास में आके सुनाती थी, फिर जो भी दादी से मिलने आता था उसको ज्ञान की कोई ना कोई बात, आज बाबा ने क्या कहा है वो सुनाती थी। तो ज्ञान के खजाने को कितना दादियों ने अपने जीवन में जमा किया, और जितनी देर देखो हम उसको पढ़ेंगे, जितनी देर हम उसको सुनेंगे, जितनी देर हम उसको दूसरों में बांटेंगे, वो सारा आपका कहाँ गया बोलो, बताइए, जमा हुआ, जमा हुआ। उसमें टाइम लगा, वो टाइम भी जमा हुआ, उसमें आपके बोल लगे, सुनाया तो वो भी जमा हुआ, सुना तो कान इंद्रिय ने सुना, हाँ, संकल्प उसमें टिकाया, ऐसे तो नहीं सुन सकते, अभी भी आप सुन रहे हो तो आपके संकल्प अभी कहाँ पर एकत्रित हैं, जो सुन रहे हो बात, अभी इस समय तो और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है जरा देख के आऊं मैं, जो भी हो रहा होने दो, कारें आ रही है जा रही है, बारिश भी हो रही है तो होने दो, अभी आप तो हॉल में आराम से बैठे हो, सिर्फ सोचने की आवश्यकता है, और यहाँ तो और भी मौज है बाबा के घर में, ये भी नहीं सोचना माताओं को 12 बजने वाले खाना बना के नहीं बना, अरे बना बनाया जाएंगे थाली में मिलेगा, हाँ, उस सोचने से भी यहाँ निश्चिंत, भाइयों को भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो हमारा वो संकल्प का भी खजाना जमा हुआ, जमा करना बड़ा आसान है संगम युग पर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है वो प्यारे बाबा ने हमें बताई है कि ये जो आपका जमा होगा ये आपके साथ रहेगा। दुनिया में मनुष्य जो कुछ भी जमा करता है वो कभी भी उसके साथ नहीं रहता, कभी भी, हाँ? यहां तक कि जब वो शरीर छोड़ता है तो उसके कपड़े भी सारे चेंज कर देते हैं, और थोड़े दिन बाद राशन कार्ड से नाम भी कटवा देते हैं, खाना पीने की भी अब जरूरत नहीं, कुछ भी उसके साथ नहीं जाता, जाता है ये तो सबको मालूम है ना। दुनिया में इसलिए क्या कहावत है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाए, ये हमारी कहावत नहीं है, हमारे लिए क्या है बोलो, भरतू हाथ आए और भरतू हाथ जाए। अब वो भरतू हाथ क्या जाएगा, कोई संसार की स्थूल वस्तुएं नहीं जाएंगी, स्थूल धन नहीं जाएगा, संबंधी नहीं जाएंगे, हमने जो ये ईश्वरीय कमाई की है, ये पढ़ाई की है, ये सेवा कर रहे हैं, ये हमारा जमा हो रहा है, ये अविनाशी है, क्योंकि ये सूक्ष्म है, ये स्थूल नहीं है, और इसको करने वाली हमारी अंतर आत्मा है। हम अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने संस्कारों से, अपने श्रेष्ठ कर्मों से ये जमा कर रहे हैं, और उसके लिए ही प्यारे बाबा ने हमें 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान का, दूसरा बोलिए, नींद नहीं करनी है इस समय, हाँ भाई सुनाओ, माताएं बोल रही हैं इधर से, ज्ञान का, दूसरा योग का, तीसरा धारणा का और चौथा सेवा का। जितना हम इन चारों बातों पर अपना ध्यान रखेंगे, अपना समय लगाएंगे, अपना चिंतन लगाएंगे, उतना हमारा जमा होता जाएगा। कितना आसान है आप सोचो। अभी आप बैठे हो, सुन रहे हो, कोई मेहनत लग रही है बताओ? लग रही है? जिसको लग रही है वो हाथ खड़ा करो। कितने सहज रीति बैठे हैं। ये एक भाई हाथ खड़ा कर रहा है, किस बात के लिए? इस भाई ने किया ना। अच्छा, बात नहीं सुनी, कुछ और के लिए किया ऐसे? हाँ, उसको बुला रहे थे आप। अच्छा ठीक है, तो सबको आसान लग रहा है ना इस समय? कुछ मेहनत करनी पड़ रही है? कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही। आपका समय भी जमा हो रहा है, आपके संकल्प भी इस समय, क्योंकि ज्ञान चिंतन में है, वो भी जमा हो रहे हैं। आंखों से जो देख रहे हो, बाबा का चित्र सामने है, कानों से ये ज्ञान रतन मिल रहे हैं, तो ये सब कहाँ जा रहा है? आपके अंदर जा रहा है। अब इसको खर्च कैसे करना है ये समझ चाहिए, ताकि वो आपका जमा हो। ईश्वरीय जादूगरी यही सबसे बड़ी बात है कि इसको जितना यूज करोगे उतना ये बढ़ जाएगा। और जब कोई चीज बढ़ जाती है तो उसे संभाल कर रखना, जमा करना आसान हो जाता है। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, धनवान व्यक्ति कैसे बनता है? हाँ, जो धन कमाने के शौकीन होते हैं, स्थूल धन, वो धन को पहले खर्च करते हैं, अलमारी में बंद नहीं रखते, नहीं तो वो बढ़ेगा कैसे? बंद पड़ा पड़ा तो वैल्यू घट जाती है। और ही हाँ, पीछे देख भी लिया ना, ऐसे एक्सपीरियंस कर लिया ना, जब मोनेटाइजेशन भी हुआ, लोगों को कितनी मुसीबत पड़ गई जो अलमारी में बंद था। हाँ, अब खर्च भी नहीं हो सकता और कहीं भी नहीं जा सकता। लेकिन ये धन, हाँ, वो धन फिर लगाते हैं इसलिए ताकि वो बढ़े। तो जो ज्ञान धन भगवान ने हमें दिया, इतना खजाना ज्ञान का, जो सर्वश्रेष्ठ है, अविनाशी है, जिसे कोई आपसे चोरी नहीं कर सकता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता है, आप भी उसको देने को सदा तैयार हो, तो बढ़ाने की, जमा करने की यही विधि है कि उसे यूज करो। आप जो मैंने सुनाया अभी, हाँ, मुरली को बार बार पढ़ना, चिंतन करना, फिर अन्यों को सुनाना, कोई को भी किसी भी विधि से, चाहे एक को सुनाओ या दस को सुनाओ, लेकिन बांटो, तो जितना बांटेंगे बढ़ेगा और तब आपका जमा होगा। ऐसे चारों बातें बताई ना, धारणा की भी और सेवा की भी। तो बाबा कहते, देखो आप इतनी भाग्यशाली आत्माएं हो कि इस समय आप अपने संकल्प से, अपने थॉट्स से भी अपना भाग्य जमा करते हो, क्योंकि संकल्प भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए वो बहुत बड़ा खजाना है। और बाबा ने हमें संकल्प की महानता बताई है कि बीज ही कौन सा है? संकल्प। कोई भी कर्म हम करते हैं, चाहे जीवन में धारणा करते हैं, सेवा करते हैं, उसके लिए पहले तो संकल्प रचते हैं ना। अगर कोई फल चाहिए किसी को, तो पहले बीज लाएगा, तब तो फल मिलेगा ना। बीज बोएगा, पेड़ लगेगा, और फिर उस पे वो एक बीज से हजारों हो जाएंगे और सदा चलता रहेगा, तो लंबा काल चलता रहेगा। आम का बीज बोते हैं, धीरे धीरे कितना बड़ा आम का फल बन जाता है, वृक्ष बन जाता है, और हर साल फिर उस पर के फल आम लगते रहते हैं। फिर भी वो स्थूल और दुनिया का विनाशी है, लेकिन हमारा संकल्प रूपी बीज अविनाशी है। तो बाबा ने इसलिए कहा है कि अपने संकल्पों पर ध्यान दो, बीज अच्छा डालो तो फल वैसा ही आएगा। दुनिया में कोई नहीं जानता कि संकल्प एक खजाना है। अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, यहां तक बता देंगे, परंतु अंदर अच्छा सोचो, हमेशा अच्छा सोचो, प्योर सोचो, पीसफुल सोचो, पॉजिटिव सोचो। अगर सामने नेगेटिव भी दिखाई दे तो भी बाबा कहते हैं पॉजिटिव सोचो। इतनी संकल्प की वैल्यू है, उससे भी हम अपने जीवन में जमा करते हैं, क्योंकि संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। जब बार बार हम एक अच्छा संकल्प करते रहेंगे तो अवश्य ही उससे हमारी आत्मा शक्तिशाली बनेगी और उस संकल्प की सिद्धि भी होगी। जैसे कोई कितनी भी सख्त दीवार हो, हाँ, कोई ड्रिल मशीन चलाता है धीरे थोड़ा और आखिर छेद आर पर हो ही जाता है, हो जाता है ना। हमको भी अपने संकल्प को जैसे बाबा कहता है वैसे रखने से हमारी आत्मा की बहुत शक्तियां जमा हो जाती है, और यही एक इतना बड़ा खजाना बन जाता है जिससे हमारी तकदीर बन जाती है। क्यों कई आत्माएं ब्राह्मण जीवन में भी इतना सहज रीति से पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ जाती है? क्योंकि वर्तमान का बहुत महत्व है। जो बीत चुका वो बीत चुका, अब आप उसकी चिंता नहीं करो क्योंकि वो तो चला गया ना। अब आपके पास जो भी समय है, अभी कई कहते हैं मैं पहले आ जाता ज्ञान में तो मैं क्या से क्या बन जाता, मुझे बहुत मौका मिल जाता। हाँ, अब जो बीत गया वो बीत गया, अब तो कितना बीत गया, अब तो बहुत ही थोड़ा रह गया। हाँ, 86 वर्ष बीत गए, चलो आपको कितने भी वर्ष हुए, 2 हुए हो, 20 हुए हो, 40 हुए हो, लेकिन आज जो भी मेरे पास है आज से ही, हाँ, कल तक भी जो हुआ ठीक है, जितना भी हुआ उसका चिंतन नहीं चलाओ, नहीं तो उसके चिंतन में भी हम जमा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे माइंड में फिर वेस्ट बहुत आता है। फिर उसको देखेंगे, इसको देखेंगे, तुलना करेंगे, फिर तेरी बात मेरी बात, हाँ, फिर मेरा भाग्य ऐसा। कई माताएं रोती हुई आती हैं, बहन जी मैं क्या करूं, मेरी तकदीर ही फूटी हुई है। अरे किसने कहा? भगवान आपकी रोज तकदीर बना रहा है। उस बिगड़ी हुई को ही तो उसने सुधार दिया, वो तो आया ही बिगड़ी को बनाने के लिए है। ये ब्राह्मण जीवन मेरा तकदीर बनाने का जीवन है। अब बिगड़ा हुआ खेल खत्म, ये निश्चय कर लो। कोई भी बातें सामने आए, कैसी भी आए, तन की, मन की, धन की, संबंध की, संपर्क की, हाँ, संस्कारों की, समझो वो बिगड़ा खेल खत्म। भले वो सामने ठीक नहीं भी दिख रहा है आपको, बिगड़ा हुआ भी दिख रहा है, तो भी आप सोच सकते हो ये खत्म, या सोचोगे ये तो बिगड़ा हुआ है और बहन जी कह रही है नहीं अब बिगड़ा हुआ खेल पूरा। हाँ, मेरा बेटा इतना बिगड़ा हुआ है, रोज मार पिटाई करता है, या मेरा फलाना इतना ऐसा है, या बिजनेस इतना गड़बड़ हो रहा है, और कह रहे हैं जी सब कुछ खत्म, ठीक हो गया ये सब कुछ। ये आपके ऊपर है कि आप कैसा सोच रहे हैं। ये पक्का अपने को समझा दो, स्वयं में ये निश्चित कर लो कि इस समय मेरा तकदीर बनाने का, अपने भाग्य को जमा करने की घड़ियां हैं। बिगड़ी हुई चीज, बिगड़ा हुआ व्यक्ति, बिगड़ा हुआ धंधा, बिगड़ा हुआ कुछ भी, वो अपनी जगह है। मैं आत्मा उससे न्यारी हूं, क्योंकि मेरा संबंध परम शक्ति के साथ है। मेरे संकल्प का कनेक्शन शिव बाबा सर्वशक्तिवान के साथ है। मेरी तकदीर का आधार ये धंधा नहीं है, ये धंधा तो निमित्त ड्यूटी है। धंधा तो मेरा एक बाबा ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसे निभाना है, बस। धंधा है, व्यापार है या परिवार है, यही तो है ना बस। आपका तो छोटा सा परिवार है, 2 का 4 का 8 का 10 का 20 का होगा। ब्रह्मा बाबा का देखो कैसे, ब्रह्मा बाबा ने धक्क से सोचा बस, ये नहीं सोचा अच्छा मैं समर्पित हो रहा हूं, उसमें से कुछ हिस्सा अलग रख दूं, हो सकता है कल समस्या आए, हाँ ये नहीं सोचा। फिर समस्या आई भी, ऐसे ही नहीं आई, बैगरी पार्ट चला भी, तो उस समय भी सोच सकता था बाबा मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, कुछ रख देता था अलग। लेकिन बाबा ने क्या सोचा, नहीं ये मेरे बच्चे नहीं, ये शिव बाबा के बच्चे हैं, ये मेरा यज्ञ नहीं, ये शिव बाबा का यज्ञ है। बाबा ने रचा है, बाबा चलाएगा, और चलता रहा। परीक्षा दी, विघ्न आया, लेकिन हमको क्या करना है, हमको उस विघ्न और परीक्षा में हैरान नहीं होना, वो अपनी जगह है। मैं बाबा के साथ उतने ही संबंध से और निश्चय से चलूं, जो आया हुआ विघ्न, आई हुई परीक्षा, वो भी पार हो जाएगी और मेरा खाता जमा हो जाएगा, क्योंकि मैंने और कोई संकल्प चलाए ही नहीं। कई बार बहुत भाई बहने अपनी समस्याओं को लेकर उस चिंतन में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उससे जो हमें जमा करना होता है वो हमारा जमा नहीं हो पाता, क्योंकि संकल्प वेस्ट गए, समय वेस्ट गया, श्वास वेस्ट गए, और फिर रिजल्ट क्या निकली। उस बिगड़ी हुई को ठीक तो फिर भी आपको ही करना पड़ेगा, परीक्षा तो फिर भी आपको ही देनी पड़ेगी, सहन तो फिर भी आपको ही करना पड़ेगा, तो और कठिन लगेगा। तो इसकी बजाय हम सदा अपने संकल्प को बाबा के साथ जोड़कर रखें, उतने निश्चय से चलें, भले हमें सहन करना पड़े। बाबा कहता ना तभी तो शहंशाह बनेंगे। फिर आप देखेंगे आपके ज्यादा संकल्प चलेंगे ही नहीं, ये अनुभव करके देखो। और हमको एक्स्ट्रा बाबा की मदद भी मिल जाती है ऑटोमेटिकली, नेचुरल, भले उस समय आपको मालूम नहीं पड़ेगा, बाद में मालूम पड़ेगा, और हो सकता है बाद में भी ना पड़े, परिस्थिति बदल जाएगी, कोई भी आत्मा निमित्त बन जाएगी, लेकिन ये आश भी लगाकर हमको नहीं रखनी, सिर्फ निश्चय रखना है कि मैं बाबा का हूं और मेरा काम है इस परिस्थिति में भी अपनी स्थिति को हलचल के बिना रखना, बस। तो आपके संकल्प जमा होंगे, आपके श्वास जमा होंगे, आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा, जमा होगा। तो संगम युग में भगवान ने हमें हर रीति से जमा का हिसाब दिया है। दूसरा, ये तन कितनी सेवा भगवान की करता है। भगवान कहता है दगीचे ऋषि के माफिक अपनी हड्डी हड्डी लगा दो। अब देखो जहां आपका फर्ज है परिवार को चलाना, वहां तो लगानी ही है, लगाते ही हो, लेकिन मैं ईश्वरीय कार्य में भी लगाऊं। ये मुझे भगवान ने समझ दी है, वरदान दिया है। कितने देखो बाबा के बच्चे बाबा की सेवा में, यज्ञ की सेवा में अपना समय निकालते हैं, लगाते हैं। फिर चाहे वाणी द्वारा सेवा करें, चाहे कर्मणा द्वारा सेवा करें, करते हैं। और यज्ञ सबके सहयोग से चलता है, सबकी उंगली लगने से चलता है। और ये कितना कमाल है कि कोई भी बाबा का बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे सेवा करने का अवसर नहीं मिलता। है कोई ऐसा आप में से बताओ जिसको सेवा करने का अवसर ना मिलता हो, चांस ना मिलता हो, मौका ना मिलता हो? कोई भी ऐसा नहीं है। ये एक माता क्या कह रही है, नहीं मिलता अवसर। तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो, तन साथ नहीं देता, तन का कारण है, मजबूर है, तो मन तो आपका ही है ना, या मन किसी और का है? बोलो, जो समझते हैं मन मेरा ही है, हाथ खड़ा करो। आप मालिक हो ना उसके। अभी हाथ आपने खड़ा किया, बहुत अच्छा, क्योंकि आप अपने हाथ के मालिक हो। तो किया ना अपनी मर्जी से, सहमति से, ऐसे मन के भी मालिक हो। अब आप मन को जहां चाहो लगाओ, व्यर्थ में लगाओ या सेवा में लगाओ, आप मालिक हो ना। तो मैं कितना अपने मन को सेवा में लगाती हूं, पूछो अपने से, या इधर उधर का चिंतन चलता रहता है। आज तो माया साइंस के साधनों के रूप से भी बहुत आती है, ये भी एक परीक्षा है। कितना संकल्प मन हम उन बातों में लगा देते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है, फिर समय भी लग जाता है। तो मैंने अपने तन द्वारा कितनी सेवा की, तब तो जमा होगा ना, और मैं निरोगी काया को पाऊंगा, 21 जन्म का वर्षा, एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस का उसके अधिकारी कौन आत्माएं हैं? कौन आत्माएं हैं? हाँ, समझा बात को? ट्रांसलेशन हो गई ना, तो कौन आत्माएं हैं? आंसर दो। ढीला ढीला बोल रहे हो, हम बोलो कौन है? हाँ, जो है वो बोलो हम। हाँ, भगवान ने हमको ही तो वो वर्षा दिया है ना, और हम औरों को भी कितने अधिकार से कहते हैं कि यहां आओगे तो 21 जन्मों का हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का कितने परसेंट, 100% वर्षा मिलेगा। तो आप सब उसकी अधिकारी आत्माएं हो ना। हाँ, बोलो। हाँ, जो उसकी अधिकारी है वो हाथ खड़ा करो। सब है ना। तो यही जन्म हमें मिला है उस अधिकार को पाने का, उसके लिए ही हम जमा कर रहे हैं। और कितनी सहज रीति जमा कर रहे हैं, एक माता थी, बहुत पुरानी थी, ज्ञान में पक्की थी। उसका पति शरीर छोड़ गया। तो होता ही है कि कुछ माताओं का अपना भी कुछ जमा किया होता है, पति के पास जो था वो भी माता को मिला हिस्सा सारा। हाँ, और बेटा बहू थे, अच्छे थे, पर बेटा बहू ज्ञान में नहीं थे, पर भावना थी हमारी माता अच्छी जगह जाती है, ठीक है। तो कुछ समय बीतने के बाद उस माता ने अपने बेटे को कहा, बेटा मेरे पास जो है ना अकाउंट, तो वो मैं निकलवाना चाहती हूँ। बेटे को थोड़ा आश्चर्य लगा, अभी क्या बात हो गई। तो उसने बेटे को थोड़े शॉर्ट में ही बताया, उसको डर था कहीं मना ना कर दे कुछ, लेकिन बेटा समझदार था, माँ की भावनाओं को समझता था। तो उसने कहा, मैं ना अपने जीते जी बाबा के घर में जमा करना चाहती हूँ। तो बेटे ने कहा, अच्छा ठीक है, बात हो गई। और कई बार ऐसे होता है ना, बात हो जाती है फिर बात बात की जगह ही रह जाती है। कुछ दिन बीत गए तो माँ ने बेटे को फिर से कहा। उसने सोचा, ये एक बार तो इसने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। का बेटा, वो मैंने कहा था ना, मेरा जो जमा किया हुआ है उसे मैं बाबा के घर में जमा करना चाहती हूँ। तो बेटे की भावना अच्छी थी, लेकिन उसने सोचा हो जाता है, काम कर लेंगे, फिर कर लेंगे। उसने कहा, माँ ये दो चार दिन में फिर कर लेंगे, संडे को तो होता नहीं है, बैंक बंद होता है, अब मेरे को छुट्टी लेनी पड़ेगी, कर लेंगे। फिर उसने दो तीन दिन बाद माँ ने याद कराया, बेटे ने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने छुट्टी ली ऑफिस से, उसको माँ को बैंक ले गया और माँ ने जो भी उसका था हिस्सा वो बैंक से निकाल लिया। और बेटे को ही कहा, मेरे को सीधा यहां से बाबा के घर ले चल। ये प्रैक्टिकल घटना सुना रही हूँ, दिल्ली की एक माता की, काफी वर्ष पुरानी है। तो बेटा उसको सीधा बाबा के घर ले आया, माँ भी आ गई, बेटा भी आ गया। और माँ ने अपने हाथों से बेटे के सामने ही दादी गुलजार के आगे यज्ञ प्रति वो रख दिया। तो माँ इतनी खुश हुई, क्योंकि बेटे ने भी कहना माना और उसके दिल की जो भावना थी, हाँ, सीधा दादी के पास आकर पहुंच गई, डायरेक्ट अपने हाथों से करने की और बेटे के सामने ही। तो बहुत खुश, ठीक हो गया सब, बाबा के यज्ञ में आ गया वो सब। एक हफ्ते के बाद हमको सूचना मिली कि उस माता ने शरीर छोड़ दिया है। आप सोचिए, तो उसका बेटा आया, उसने इतना धन्यवाद दिया, माँ के मरने का दुख तो उसको था, लेकिन उसने कहा, मुझे अंदर से इसलिए अब उतना दुख नहीं हो रहा क्योंकि माँ ने अपनी इच्छा पूरी की। अगर मैं नहीं जा पाता व्यस्त होने के कारण, थोड़ा और लेट कर देता, तो मेरे जैसा पापी कोई नहीं होता, मैं इस दुख को फिर भूल नहीं सकता था। पर मुझे ये अंदर से सुकून मिल रहा है कि मेरी माँ जीते जी अपनी इच्छा को, अपने संकल्प को पूरा करके गई, अपना जमा करके गई और अपनी तकदीर अपने साथ बना कर गई। तो उसके आंसू बहते जाएं और वो बार बार बाबा का शुक्रिया, दादी का शुक्रिया, अपनी माँ का शुक्रिया और माँ की तकदीर का शुक्रिया कर रहा था कि मेरी माँ कितनी भाग्यशाली निकली, मरने के दुख से ज्यादा मुझे इस चीज का अंदर में एहसास हो रहा है कि कम से कम मेरी माँ अपना जमा करके गई, नहीं तो मैं उसको भी दुख होता और मुझे भी दुख होता और मैं तो उस दुख को जिंदगी भर नहीं भुला पाता। तो देखो, संगम युग पर भाग्य बनाने के लिए बाबा ने हमें सब चांस दिए, सब चांस। कोई आत्मा ये नहीं कह सकती मैं जमा कैसे करूं। हर एक को बाबा ने विधि भी बताई है, अवसर भी दिया है, चाहे तन से, मन से, धन से, संबंध से, संपर्क से, अपने स्वभाव और श्रेष्ठ कर्मों से। खूब जमा करो, इतना कि 21 जन्म तो हम निश्चिंत होकर खाएंगे ही, मौज मनाएंगे ही, परंतु 84 जन्म भी बाबा कहता है मैं आपको खिलाता रहूंगा। इतनी बाबा की हमारे साथ गारंटी है। तो संगम युग पर तो हमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। कई बार कोई कोई बाबा के बच्चे ऐसा सोच लेते हैं, अच्छा भले बाबा के घर सेवा तो करनी है, चलो जितनी थोड़ी मैं कर सकता हूँ यथाशक्ति, कुछ तो आईवेल के लिए भी रखना ही पड़ेगा। आईवेल समझते हो, आने वाले कोई भी समय में मुसीबत के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, वो भी काम नहीं आता। ये अनुभव भी कर चुके हो ना अभी ड्रामा के दृश्यों में। ये नहीं बाबा कहता है कि आप 100% सब खाली हो जाओ, भले संभालो, भविष्य भी सोचो, लेकिन वर्तमान में मेरी जो ताकत है, वर्तमान मेरा भाग्य है, और वर्तमान ही मेरा भविष्य बनेगा। अगर ब्रह्मा बाबा भी यही सोचता रहता तो अपने को पूर्ण समर्पित कैसे करता। और देखो जब परीक्षा आई भी तो बाबा ने पार कर ली ना, शिव बाबा की मदद मिली ना, चाहे किसी आधी आधा डोडा रोटी का खाया और लस्सी का ग्लास पिया, भूखा तो कोई नहीं रहा ना। और बाबा ने तो गारंटी की हुई है कि और कुछ नहीं तो दो रोटी दाल बाबा खिलाता ही रहेगा। हाँ, दाल चावल खिलाता ही रहेगा। और ब्राह्मण को और क्या चाहिए। अगर मैं सच में ऐसी महान आत्मा बन रही हूँ, हाँ बन ही गए, बाबा ने बना ही दिया, और ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल आत्माओं, तो मुझे और बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। और अपना मुझे कैसे सब सफल करना है, अर्थात यूज करना है, मींस उससे ही मेरा जमा होगा। जमा कोई अपने आप तो नहीं हो जाता है ना। और वैसे भी कुछ जमा करने के लिए देखो उतना हमें कमाना पड़ता है, जिसमें हमारा खर्च भी निकल जाए और जमा भी हो जाए। तो संगम युग पर बाबा ने कमाने के भी हमको कितना अच्छा पुरुषार्थ दिया कि ये अविनाशी कमाई है, और इस अविनाशी कमाई को आप ज्ञान से, योग से, धारणा से और सेवा से कर रहे हो। चलो मैं धन नहीं लगा सकती, तन तो लगा सकती हूँ, तन नहीं लगा सकती, अपनी कोई विशेषता गुण जो बाबा ने दिया उसको तो लगा सकती हूँ ना। तो जो आपका स्थूल में, लौकिक में है, वो ईश्वरीय कार्य में लगाओ, और जो ईश्वर से मिल रहा है ज्ञान और योग, वो औरों की सेवा में लगाओ। तो ये डबल करने से आपका जमा तुरंत स्पीड से जमा होगा, स्पीड से। और इतना भाग्य बन जाएगा कि आप 84 जन्म के लिए विशेष आत्मा बन जाएंगे, हीरो। बाबा कहते हैं ना, आप वर्ल्ड ड्रामा के हीरो एक्टर हो, तो कैसे हीरो बनोगे। कोई भी स्टोरी में हीरो कौन होता है, जिसके अंदर गुण, कलाएं, ताकत, हाँ, और वो भगवान हमारे अंदर भर रहा है इस समय। बाबा कहता है आप भी वर्ल्ड ड्रामा के हीरो हीरोइन एक्टर्स हो, 84 जन्मों का रोल तो आपको ही प्ले करना है। तो द्वापर और कलयुग में भी आप साधारण नहीं होंगे। अभी देखो अंतिम जन्म में है हम सब, है ना हमारा अंतिम जन्म। आपके पास क्या नहीं है, तन मन बुद्धि अच्छी, कितनी अच्छी बुद्धि है, दुनिया में तो किसी की भी नहीं है ऐसी बुद्धि, दुनिया की तो विनाशकारी बुद्धि है ना? सबको निश्चय ना इस बात का अपने में, बोलो है ना सबको अपने में इस बात का निश्चय? फिर तो उसे कहां लगा रहे हो? ये देखो, यूज करो, सेवा में लगाओ। तो मुझे अपने इन स्थूल खजानों को भी सेवा में लगाने से अविनाशी बनाना है। है विनाशी खजाना? अभी तन कोई अविनाशी थोड़ा है, विनाशी है ना, परंतु इसको ही मैं सेवा में लगाती हूँ। आज मेरा ये तन साथ दे रहा है, मैं जो चाहूं कर सकती हूँ, कल मालूम नहीं क्या हो। आज आपका मन जितना चाहो उसको साध सकते हो, कल परिस्थितियां और बिगड़ जाएंगी, उस टाइम थोड़ा इतना योग लगा सकेंगे। और आप देखो अभी भट्टी करने आए, ये कितना अच्छी निशानी है कि आपको पुरुषार्थ की लगन है ना? तो देखो समय भी लगाया, तन भी लगाया, धन भी लगाया, तो सफल हुआ ना सब, जमा हुआ ना सब, ये जमा हुआ खाता। बाबा के घर में हम जितना चाहे जमा कर सकते हैं, इससे ही हमारा संगम युग पर अविनाशी कमाई का खाता बन जाता है। तो विनाशी को भी अविनाशी में कन्वर्ट कर देना, ये कितनी बड़ी जादूगरी है। क्योंकि दुनिया में तो वो कितने भी करोड़ अरब वो यहां ही रह जाएंगे ना, और आपने थोड़ा भी बाबा के घर में जमा किया तो वो आपके साथ जाएंगे, यहां नहीं रहेंगे। ये जिम्मेदारी भगवान ने स्वयं ले ली, और ऐसी जिम्मेदारी दुनिया में कोई भी ताकत ले नहीं सकती। है कोई ऐसी बैंक या है कोई ऐसी अथॉरिटी जो कहे जहां आप अगले जन्म में जन्म लोगे ना, वहां आपको मैं बैंक का खाता वापस लौटा दूंगा? हो ही नहीं सकता ना, है कहां से, हो ही नहीं सकता ना। और यहाँ भगवान देखो कहता है तुम इस समय लगाओ और जन्म जन्म पाओ, मैं तुम्हें जन्म ही ऐसे स्थान पर मिलेगा जहां आप माला माल होंगे, आपको कमाने की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। तो ये है इस समय के जन्म की हमारी बहुत ऊंची तकदीर कि विनाशी को भी अविनाशी बना लेना। इतना जमा हम इस समय कर सकते हैं, ये हमारी ही मुट्ठी में है। और आपके सामने तो मिसाल है, देखो सब मम्मा बाबा और हमारे वरिष्ठ सब, हाँ भाई दीदियां दादियां, हाँ जिन्होंने सब कुछ अपना जीवन का भगवान के कार्य में लगा दिया। और आप परिवार में रहते हुए कमल पुष्प समान बन, सैंपल बन करके अपने तन से, मन से, धन से, समय से, हाँ संकल्प से, स्वास्थ्य से, संबंध से, संस्कारों से अपना जमा कर रहे हो और उसको बढ़ाओ। जितना करेंगे उतना बढ़ता जाएगा, और वो जो विनाशी जो कल आपके हाथ में नहीं रहेगा वो भी आपके हाथ में आ जाएगा, आपकी तकदीर के साथ जाएगा। तो आप बताओ, आप भर्तु आए थाए और भर्तु हाथ, बोलो भर्तु हाथ जाएंगे भर करके, और उस समय कितनी खुशी होगी, कितना हमें रूहानी नशा होगा। फिर दुनिया वाले गीत गाएंगे आपके लिए, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल। वो देखेंगे भगवान इनको ले जा रहा है और हम तो यहाँ के यहाँ ही रो रहे हैं। तो ये नशा है आप सबको, हम भर्तु हाथ जाएंगे। तो ये याद रखना, भूलना नहीं कि मुझ आत्मा को भर्तु हाथ जाना है। इसलिए जो भी खजाने मुझे इस समय मेरे पास हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, आपके पास डबल खजाने हैं, स्थूल भी है सूक्ष्म भी है ना। जितना भी है सूक्ष्म तो अपरंपार भगवान ने भरकर दिया है ना, और स्थूल भी है, तो उसे मुझे कैसे तकदीर में बदल देना है बस। नहीं तो कल को आएगा मन में, मुझे तो चांस मिला था, मैं तो बहुत सेवा कर सकता था, मेरे पास तो ये भी था वो भी था करते रहोगे, तो था नहीं है, आज भी है कल भी होगा, चलते टाइम भी मैं भरतू हाथ हूं, भाग्य को लेकर जा रहा हूं, अविनाशी कमाई वाली आत्मा हूं, ये सदा रहे। तो जमा के लिए अब ये महावाक्य भगवान का याद रखना, मुझे भरतू हाथ जाना है, खाली हाथ दुनिया जाती है और मैं आत्मा भाग्यवान, पद्मा पदम भगवान ने मुझे भाग्य दिया है तो मैं भरतू हाथ आत्मा जाऊंगी, इसलिए मुझे अपना इस समय सब कुछ सफल करना है, और तभी वो जमा होता जाएगा, सफल करने से ही वो जमा होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, याद रहेगी ये बात सबको, जिनको रहेगी हाथ हिलाओ। बहुत अच्छा, ओम शांति।